आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।
हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग। आज है अप्रैल फूल, यानी अप्रैल की पहली तारीख। अगर आपका मन ये जानने का हो कि क्यों अप्रैल फूल मनाया जाता है, तो आज का ज्ञान ध्यान जरूर सुनिएगा। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और मैं लाया हूँ पूरे दिन की खबरों का लेखा जोखा इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर। किन खबरों पर विस्तार में बात करेंगे, पहले वो बताता हूँ। कुंभ मेला आज से विधिवत शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना की चुनौती भी है, तो सरकार ने क्या व्यवस्था की है, ये बताएंगे ग्राउंड पर पहुंचे हमारे रिपोर्टर। बंगाल के बाद पुडुचेरी पहुंच गए हैं अमित शाह, यहां बीजेपी की जीत के चांसेस कितने बन रहे हैं ये जानेंगे। वैक्सीनेशन तो चल रहा है एकदम धड़ाधड़, लेकिन वैक्सीन खराब भी हो रही हैं, इसका डैमेज रोका कैसे जाएगा ये समझेंगे। और लास्ट में सुपरस्टार रजनीकांत की बात, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है उन्हें, तो उनके साथ काम किया है मशहूर एक्टर रजा मुराद ने, उनसे सुनेंगे उनके अनुभव। लेकिन पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से।
बंगाल में शाम 5 बजे तक 80.43% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर जब पोलिंग बूथ का जायजा लेने पहुंची, तो उन्होंने वोटिंग में आ रही दिक्कतों की शिकायत चुनाव आयोग से की, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई एक्शन नहीं होने पर ममता धरने पर भी बैठी और राज्यपाल को फोन कर बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने को कहा है। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु के सीएम ईपीएस पलानीस्वामी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में डीएमके नेता ए राजा को 48 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया है। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 72,330 नए मामले सामने आए हैं और 459 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। कोरोना से निपटने के एक्शन प्लान, वैक्सीनेशन, कंटेनमेंट जोन, अस्पतालों के बेड प्रबंधन आदि की समीक्षा की जाएगी। रजनीकांत को फाल्के अवार्ड के ऐलान के दौरान केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भड़क गए। दरअसल जावड़ेकर से सवाल किया गया कि क्या तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए रजनीकांत को ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जिस पर जावड़ेकर को गुस्सा आ गया। भारत ने म्यांमार में हिंसा की निंदा की है और लोगों की मौत पर शोक जताया है। साथ ही म्यांमार के सैन्य शासन से अधिक संयम बरतने और हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने की अपील की है। कोरोना वायरस से बुरी तरह से प्रभावित ब्राजील ने भारतीय कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लेने से मना कर दिया है। ब्राजील सरकार का कहना है कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मानक पर वैक्सीन खरी नहीं उतरती है। अमेरिका में पिछले साल कोविड-19 महामारी समेत कई कारणों से 33 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है, जो एक साल में होने वाली सर्वाधिक मौत है। कोरोना वायरस के कारण करीब 3,75,000 लोगों की मौत हुई है, जो 2020 में दिल की बीमारी और कैंसर से होने वाली मौत के बाद तीसरे स्थान पर है। और कोरोना से जूझ रही भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, इसकी पुष्टि मार्च में हुआ जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े करते हैं। मार्च 2021 में सरकार को 1,23,902 करोड़ रुपए जीएसटी रेवेन्यू मिला है।
83 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कुंभ 12 के बजाय 11 साल में आयोजित हो रहा है। इस बार आयोजन हरिद्वार में है। वैसे तो कुंभ का आयोजन कभी भी हो, कहीं भी हो, काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इन मुश्किलों को कोविड-19 ने बढ़ा दिया है। आज से विधिवत शुरू हुआ मेला 30 अप्रैल तक चलने वाला है, तो मेले का पहला दिन कैसा रहा और सरकार का प्रबंध कैसा है, गाइडलाइंस क्या हैं, ये हमने पूछा आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्रा से, जो इस वक्त हरिद्वार में ही हैं।
जैसे कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी कि 1 अप्रैल से महाकुंभ, जो कि उत्तराखंड सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है, तो जो लोग भी हरिद्वार पहुंचेंगे उनमें से पहली शर्त तो यह है कि वो लोग कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया हुआ हो, जो कि 72 घंटों में ही हुआ हो, वो लेकर के आए तो उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा, उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं वो। अगर वो नहीं लेकर के आते हैं तो उन्हें फिर कई जगहों पर बंदोबस्त किए गए, चाहे नॉर्थन बॉर्डर हो जो लैंड रूट है, या हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, उत्तराखंड के जितने रेलवे स्टेशन है, बाहर से जो ट्रेनें आ रही हैं, रेलवे स्टेशनों पर ही उनको कोविड टेस्ट, वहां रैंडम टेस्टिंग करवाई जा रही है, बड़ी संख्या बढ़ाई गई है। हालांकि एसओपी ये भी कहती है कि लोगों को जो कुंभ का पोर्टल है वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, साथ ही अगर वो ज्यादा उम्र के हैं, हालांकि 60 साल के ऊपर के लोगों को अनुमति नहीं है, और ऐसे में अगर कुछ लोग आ रहे हैं जिनके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है, कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, कोई सहरुग्णता की शिकायत नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसी किसी को शिकायत है तो उनको भी आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन चूंकि संख्या बढ़ी है, अभी तो फिलहाल बहुत कम लोग, अगर आज पहला दिन था मुझे जहां तक लगता है कि कुल मिलाकर 10,000 लोग भी शायद हर की पौड़ी पर सुबह से शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ज्यादातर लोगों ने बताया कि कोरोना का खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ी जो महंत है, पुजारी है, उनको लगता है कि ये जो नई नई गाइडलाइंस बनाई गई है उसके चलते कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से हुई, तो उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि अलग अलग गाइडलाइंस बना दी। अब कह रहे हैं 72 घंटे पहले टेस्ट रिपोर्ट लेकर के आओ, तो उससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। लेकिन उनका बड़ा सवाल ये है कि बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां तो कोरोना नहीं फैल रहा है, तो फिर हिंदुओं के कार्यक्रम के आयोजन में ही कोरोना क्यों फैल रहा है। दूसरे जो पुजारी हैं जो लोगों की पूजा पाठ करवाते हैं, वो भी ये कह रहे हैं, जिनसे हर की पैड़ी पर हमारी बात हुई, कि लोगों में डर तो है ही, लेकिन साथ साथ नई नई गाइडलाइंस की, कभी मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि कोई नियम नहीं होगा, फिर उन्हीं के परिवार को कोविड हो जाता, फिर नए नियम आ जाते हैं, तो लोगों में कंफ्यूजन भी है, भय है, जिसके चलते लोग हर की पैड़ी नहीं पहुंचे। और भीड़ को लेकर के एक पुजारी जिनसे हमारी बात, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इससे ज्यादा भीड़ तो रविवार और शनिवार को पहुंच जाती है और उस मुकाबले लोग नहीं पहुंचे हैं।
आशुतोष, आज तो पहला ही दिन था, आने वाले दिनों में शाही स्नान होगा, पर्व त्योहार भी हैं इस दौरान, और देश के कोने कोने से लाखों लोग जुट सकते हैं, तो ऐसे में क्राउड कंट्रोल, क्या कहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे कराएगी सरकार, क्या तैयारियां हैं?
सोशल डिस्टेंसिंग दरअसल हरिद्वार प्रयागराज के मुकाबले बेहद छोटा है, सगरी गलियां हैं, ज्यादा खुला इलाका है नहीं। आने वाले लोगों के लिए दूर मैदानों में लाइन लगाने की व्यवस्था तो है, लेकिन घाट कम पड़ जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग सर्कल वहां बनाए गए हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन हमने देखा था कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई थी। जगह जगह पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर लगाए गए हैं, हाथ धुलवाने का बंदोबस्त किया गया है, और भीड़ अगर जिस संख्या में शिवरात्रि में आई थी, अगर उस संख्या में आती है तो व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। हालांकि शाही स्नान के दिन, चूंकि हमने पिछली बार देखा था, शाही स्नान के लिए जब समय खोला गया तो बाकी घाट दूसरे श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। शाही स्नान के दिन सिर्फ अखाड़े स्नान कर रहे थे और अखाड़ों का रूट बहुत छोटा था, उनके साथ आने वाले जो समर्थक थे उनकी संख्या बेहद कम थी। तो अगर शाही स्नान जो कि 12, 14 और 27 अप्रैल को है, 3 शाही स्नान है, अगर वो उसी तरीके से किए जाते हैं तो व्यवस्था में दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि 8 बजे तक जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके होंगे, आने जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर उस दिन बाकी श्रद्धालुओं को रोका जा सकता है तो शाही स्नान पूरी तरह से जो है निपटाया जा सकता है पूरी सुरक्षा के मद्देनजर। कोविड टेस्टिंग भी की जा रही है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग पर जोर अभी फिलहाल नहीं दे रहा शायद यहाँ प्रशासन, लेकिन एंटीजन टेस्ट से भी 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाती है। तो नियमों को लेकर के थोड़ी सी सख्ती और दिखानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हमें मिले जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, कुछ हैं जो नियम मान रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नियम नहीं मान रहे हैं, तो बंदोबस्त और तैयारियां पूरी हैं। लेकिन अगर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो इलाका छोटा है, जितना मैन पावर है, जो व्यवस्था है, उसके आगे सब धराशायी हो जाएगी।
बंगाल के बाद अब भाजपा के दिग्गजों का फोकस बाकी राज्यों के चुनाव पर है। खुद पीएम मोदी आज कोकराझार में थे, असम में है ये, पीएम के निशाने पर यहाँ कांग्रेस है, उसका घोषणा पत्र है, क्या वो बोले सुनाता हूँ।
कांग्रेस का घोषणा पत्र तो सिर्फ घोषणाओं के लिए होता है, 2-3 लोग मंच पर ही घोषणा पत्र बना लेते हैं। इस वीडियो में वो अपनी कलई, अपना जुड़ खुद ही खोल देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ घोषणा कर दो, घोषणाएं पूरा करने के लिए नहीं होती हैं। यही काम इन्होंने देश भर में किया है।
प्रधानमंत्री असम में थे तो गृह मंत्री तमिलनाडु में थे। त्रक्कुइल्लूर में उन्होंने रैली की और डीएमके नेता ए राजा पर हमलावर रहे।
मैं बंगाल था, डीएमके के नेता ए राजा का बयान मैंने देखा। मुख्यमंत्री जी की माता के लिए, स्वर्गवासी माता के लिए जिस प्रकार का बयान दिया है, मुझे लगता है डीएमके को महिलाओं के सम्मान की कोई सूद नहीं है, और इस प्रकार से ओछी और नीची राजनीति कर वो चुनाव जीतना चाहते हैं।
वैसे 6 अप्रैल को पुदुचेरी में भी चुनाव है, अभी अभी वहां नारायण सामी की सरकार गिरी थी, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार उसके पास यहां जीतने का मौका है। अमित शाह यहां भी पहुंचे, हालांकि मीडिया में इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर चर्चा कम है, तो हमने सोचा कि आज इस पर बात की जाए। अमित शाह आज करुवादी कुपम के सीतानंद स्वामीगल मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना की, फिर एक रोड शो भी किया। तो हमने सीनियर जर्नलिस्ट टी सुरेश कुमार को फोन किया और उनसे पूछा कि बीजेपी के कितने चांस लग रहे हैं पुदुचेरी में।
इस पर तो बीजेपी बहुत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरह पुदुचेरी में अपना एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनाए, क्योंकि आपको पिछले बार तो उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, एमएलए उनके विधायक चुनाव से जीत के नहीं गए थे, 3 नॉमिनेटेड एमएलए वहां पे थे पुदुचेरी में इसके पहले। तो ये पहली बार उनका पूरा कोशिश है कि किसी न किसी तरह विधायक को वो चुनाव में लड़के विधायक को असेंबली में भेजना है करके। पिछली बार इलेक्शन में तो 30 कैंडिडेट्स को खड़ा किया था बीजेपी ने, उसमें से 29 लोग डिपॉजिट हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि जाने माने कैंडिडेट्स जो है कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है वो अभी बीजेपी में शामिल है, और बीजेपी भी अपने सारा का सारा जो रिसोर्सेस है वो पुदुचेरी पे लगाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे 2 बार कैंपेन कर चुके हैं, अभी अमित शाह आए हैं और यूनियन मिनिस्टर्स सीतारामन नितिन गडकरी सब वहां पे कैंप किए थे पिछले कुछ दिनों से, और बाकी भी कहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता वहां पे आने वाले हैं, तो उनका कैंपेन इसी में फोकस करेंगे क्योंकि इस बार जो कांग्रेस के विधायक जो उनको उनके पार्टी में अभी शामिल हुए उनके सपोर्ट से किसी न किसी तरह या इस बार असेंबली में चले जाए, तो ये लगता है बहुत सीरियस फाइट है इस बार।
अच्छा, नारायण स्वामी चुनाव नहीं लड़ रहे सर, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? और जिस तरह सरकार गिरी है कांग्रेस की, आपको लगता है कि किसी तरह की हमदर्दी दिखाएंगे वोटर इस पार्टी के साथ?
देखिए, ये जो नारायण स्वामी को फील्ड नहीं करना ये बहुत बुरा निर्णय था, क्योंकि वो एक चीफ मिनिस्टर थे जो लगातार कहते रहे कि मैं पुदुचेरी को डेवलपमेंट लाना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने हर समय हमारे कुछ ना कुछ हर्डल पोस्ट करते रहे, तो इसी वजह से कुछ डेवलपमेंट या कुछ पॉलिसीज वहां पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री नहीं लड़ते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जो पिछले महीने तक मुख्यमंत्री रहे थे, जब वो नहीं लड़ते हैं तो अपोजिशन उसको पूरी तरह से उसका एक्सप्लॉइट करेगी। अभी भी प्रधानमंत्री जब वहां पे आए थे 2 दिनों पहले, तो उन्होंने यही रखा कि जो मुख्यमंत्री है वो नहीं लड़ रहे हैं, तो हार मान के कांग्रेस ने, तो यही बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इतने साल से पुदुचेरी के पॉलिटिक्स में शामिल हुए थे नारायण स्वामी, वो इस बार चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। और ऊपर से ये बात ही नहीं, कांग्रेस डीएमके के जो गठबंधन है उसमें कांग्रेस को दिया गया था 15 सीट, लेकिन उस 15 सीट में एक कॉन्स्टिट्यूंसी यानम में उन्होंने किसी भी कैंडिडेट को नहीं लगाया, तो इससे पहले ही आपने एक सीट अपोजिशन को छोड़ दिया आराम से बिना कुछ कैंडिडेट को फील किए वहां पे, तो ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो शायद वो फोर्सी कर रहा है कि इस बार उनको इतना सपोर्ट समर्थन नहीं मिलेगा जनता से। ये बात तो सही था कि ये सरकार गिर गई, और जब गिरी वो जरूर यू नो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ था, और जिस तरह वो गिराया गया था उनको, सरकार का भी 2 ही महीना था उनके पास और कंप्लीट करने के लिए, और उस समय उनको गिराया गया, ऊपर से बीजेपी का हाथ भी इसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्योंकि वहां पे जो कैंडिडेट रिजाइन किए वो यहाँ पे शामिल हुए हैं अभी, तो एक तरफ तो ये बोल सकते हैं, लेकिन 4 साल से यदि एक सरकार यही बोलता रहेगा कि हमें यू नो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पूरी तरह से हमारे जो कुछ भी कोशिश या कामयाबी तो उसको उन्होंने रोक दिया, तो जनता पूरी तरह से उसी को नहीं लेगी ना, कि सरकार बोलेगी कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो जनता को तो डेवलपमेंट चाहिए, उनको तो सिविक इश्यूज का रिट्रेसल चाहिए, वो जब नहीं हुआ तो सोचेंगे कि सरकार वीक था, सरकार यही सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगा जैसे एएनआरसी और बीजेपी की जो गठबंधन है उसको लैंडस्लाइड नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां भी थोड़ा बहुत तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दोनों अलायंस के बीच है, क्योंकि अभी तक वहां पे बीजेपी ने एएनआरसी के लीडर को सीएम कैंडिडेट करके अभी भी उन्होंने सपोर्ट समर्थन नहीं दिया है, वो बोल रहे चुनाव के बाद देखेंगे, तो ये जो अलायंस के बीच अपोजिशन अलायंस में जो डिफरेंस है इसके वजह से थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं होगा, लेकिन शायद एनडीए की सरकार बन सकती है इस बार।
आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।
देश विदेश में कोरोना का वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन वेस्टेज भी हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी जो है रोज वैक्सीन के 6% डोज वेस्ट हो रहे हैं। वैक्सीनेशन वेस्टेज को कम करने के लिए सरकार तैयारियां कर रही है, क्योंकि वैक्सीन तो भाई किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दी जा सकती। हमने बात की आज तक रेडियो में हमारे सहयोगी ऋचिक मिश्रा से और उनसे सरकार की तैयारी पर सवाल पूछा।
देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी ने राज्य सरकारों के साथ एक बैठक की थी और उन्होंने उसके बाद सबको बताया भी कि अभी पूरे देश में करीब 6% वैक्सीन की डोज जो है वो खराब हो रही है और उसको उन्होंने राज्य सरकारों से रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम इसे घटा करके 1% पर ले करके आए। रोज अपने आप वैक्सीन का जो वेस्टेज है, जो खराब हो रही है, उनका रिव्यू करें और उनकी डिटेलिंग जो है, मतलब कितना स्टॉक आया, कितना वैक्सीन लगा, कितना नहीं लगा, कितना बच गया, वो कोविन और ई विन करके एक पोर्टल बनाए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, जिसको स्वास्थ्य कर्मी और वही लोग ऑपरेट करते हैं जो वैक्सीन लगाते हैं और उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो उसकी डिटेलिंग उसमें अपडेट करते हैं रेगुलर। साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये बात भी कही है कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके खपत के अनुसार किया जाए। अगर वैक्सीन, ताकि इससे फायदा ये होगा कि ओवर स्टॉक हो जाए, पता चला लोग आ नहीं रहे हैं, और अंडर स्टॉक हो गया कि लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो इस चीज से बचने की भी सलाह दी गई है। सबसे पहली तो सलाह वही है उनकी कि स्टॉक का रिव्यू करें, कितना लग रहा है, कितना वेस्टेज हो रहा है, उसका अपडेट रेगुलर डालें ताकि उतनी ही वैक्सीन उस जगह पर पहुंचाई जा सके जहां पे जितने लोग हैं उससे न ज्यादा न कम, ताकि नुकसान से बचा जा सके।
वैसे वैक्सीन के डैमेज की बात करें तो अमेरिका की एक फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 15 मिलियन डोज बर्बाद हो गई। कंपनी ने क्लेम किया कि वैक्सीन जो वो बना रहे थे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए ऐसा करना पड़ा। वहीं भारत में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 72,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, 459 लोगों की मौत हुई है। फ्रांस में हाल इससे भी बदतर है, पूरा देश अब लॉकडाउन में है। ऐसे में भारत ने तो खैर ये तय कर लिया है कि आज से 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसमें संडे हो या कोई हॉलीडे हो, अभियान रुकेगा नहीं, रोज चलेगा। खैर, अब बात करते हैं उसकी जिसकी चर्चा इस देश में दशकों से है, सुपरस्टार रजनीकांत। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खबर आते ही सोशल मीडिया पर रजनीकांत के नाम की बहार आ गई। इस मौके पर हमने बात की फिल्म इंडस्ट्री की कद्दावर शख्सियत और कई फिल्मों में रजनीकांत के साथ काम कर चुके अभिनेता रजा मुराद से।
मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। काफी फिल्मों में उनके साथ काम करने का मुझे शर्फ हासिल हुआ है और देखिए, जो उनकी जो जाती जिंदगी है वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। हैं तो बुनियादी तौर पे वो महाराष्ट्रन, उनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है, लेकिन उनकी परवरिश बेंगलोर में हुई और उनके वालिद बहुत सख्त किस्म के इंसान थे, इन पे काफी सख्तियां करते थे और ये बस कंडक्टर भी रह चुके हैं। तो ये चले गए चेन्नई, वहां के फिल्म इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला लिया और इनकी मुलाकात के बालाचंद्र जी के साथ हुई। मुझे भी उनके साथ काम करने का शर्फ हासिल हुआ है, बालाचंद्र जी के साथ फिल्म एक दूजे के लिए में। तो उन्होंने इन्हें नाम दिया रजनीकांत। तो शुरुआत जो थी इनकी नेगेटिव रोल से हुई थी और ये शत्रुघ्न सिन्हा से बहुत मुतासर थे। शत्रु साहब जिस तरीके से चलते थे या जिस तरीके से सिगरेट पीते थे, सिगरेट उछालते थे, सिगरेट जलाते थे बड़े स्टाइल से, तो शत्रु साहब की काफी इन पर इन्फ्लुएंस रही है। और उसके बाद हर रिलीज के बाद इनकी मकबूलियत, इनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती गई और फिर ये इतने मकबूल हुए कि ये विलन से हीरो हो गए और एक ऐसा लेजेंडरी हीरो जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ हमारे मुल्क तक ही महदूद नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु तक ही महदूद नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बहुत मकबूल हैं।
रजा साहब, रजनीकांत को हम सबने स्क्रीन पर एक स्टाइलिश हीरो के तौर पर देखा है, सिगरेट उछालता है, गोली चलाकर उसे जलाता है, अकेले 10-10 गुंडों को मार गिराता है, लेकिन आपने तो उनके साथ काम किया है, करीब से जानते हैं, असल जिंदगी में रजनी साहब की शख्सियत कैसी है?
तो जाती जिंदगी में ये बहुत ही सादा तबीयत इंसान है, कोई गुरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो एसेस नहीं है, इतना सादा तबीयत और सिंपल इंसान है कि देखकर वाकई ताज्जुब होता है। आज हमारे बहुत से ऐसे हीरोज हैं जिनके बाल कम हो गए हैं तो वो विग लगाते हैं अपने गंजेपन को छुपाने के लिए या टोपी पहनते हैं। अब इनकी सादगी देखिए कि इतना मशहूर हीरो, इतना पॉपुलर हीरो जिसकी स्क्रीन पे ऐसी इमेज है, लेकिन कभी उन्होंने अपने गंजेपन को नहीं छुपाया, ना तो उन्होंने टोपी पहनी ना उन्होंने विग लगाया। इससे पता चलता है कि इंसान जो है कितना सादा तबीयत इंसान है और फैमिली मैन है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनकी बेटियां हैं, उनकी बीवी है, बुनियादी तौर पे फैमिली मैन। और मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, हम लोग एक फिल्म कर रहे थे गंगुआ, तो उसकी शूटिंग हम कर रहे थे और शूटिंग ऊटी में हो रही थी, तो हमारा और इनका कमरा साथ साथ था, तो मुंबई में इनकी एंट्री होने वाली थी, तो आए, दरवाजा खटखटाया, मैं आई कम इन सर, मैंने कहा आइए आइए जरूर आइए, तो आए ये, सर टेल मी समथिंग अबाउट मुंबई, हाउ डू दे वर्क। तो मैंने उन्हें जरा तरीका समझाया कि आपका तरीका जो है मुख्तलिफ है, मुंबई में मुख्तलिफ है। तो मैं लेटा हुआ था, थोड़ी ठंड हो रही थी, सेड मे आई टेक योर लीव सर, आई सेड प्लीज सर खुल जाए सर। तो उन्होंने देखा कि मेरा कंबल जो है वो मैंने उड़ा नहीं है, तो आए मुझे कंबल उड़ाया और चले गए। सादगी है उस शख्स की और जो उनकी पॉपुलैरिटी है, मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई इतना पॉपुलर एक्टर होगा।
तो आज के दिन भर को समेटने का हो गया है वक्त। कैसा लगा ये न्यूज पॉडकास्ट बताइएगा जरूर radio@aajtak.com पर। और हाँ, क्योंकि आज अप्रैल फूल डे था, तो आज कैसा रहा आपका दिन, किसी ने आपका अप्रैल फूल बनाया हो या आपने किसी और को बनाया हो तो वो भी मेल करके बताइएगा, मजे लेंगे और अपने शो में शामिल भी करेंगे अगर आपका किस्सा दिलचस्प हुआ। आज के इस न्यूज पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और कपिल देव सिंह ने रोज की तरह साउंड मिक्सिंग का काम संभाला है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है, आपसे अगली मुलाकात कल सुबह होगी न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन में। तब तक दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो।
इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/itmi/ या कॉल करें 9560065465।